نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مادن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد والي الغلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد والي وصحبي وبارك وسلم. أما بعد، عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آپ نے ارشاد فرمایا لا تکن فلاں، تو عمر اس انسان کی طرح مت ہو جانا. لا تکن فلاں، فلاں فرمایا بس نام نہیں لیا کسی کا، یعنی جو بھی یہ عمل کرے، جو بھی ایسا عمل کرے اس کی طرح تمہیں نہیں ہونا ہے. پھر عمل کیا تھا؟ وہ عمل یہ تھا کہ بھائی کانا یا قوم اللیل فترقا قام اللیل او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی مفید، الحمدللہ، اور بہت ہی کارآمد چیز ہے کہ دیکھ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو بھی یہ کام کرتا ہے. کیا کہ بھائی وہ ایک عمل کو شروع کرتا ہے، مثال کیسے کہاں یا قوم اللہ، کہ اس نے رات کی عبادت شروع کر دی، نفل شروع کر دی، کوئی بھی عبادت شروع کری، تہجد شروع کر دی، اور پھر فرمایا فتقل قیام اللہ. اس کے بعد اس کے پاس دل بھر گیا اس عمل سے، پورا ہو گیا شوق اس کا، تو پھر کیا کیا؟ اس کو چھوڑ دیا. تو یہ ایک بہت ہی مفید حدیث ہے کہ اس میں ہمیں سوچیں کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسا موقع عطا فرما دیتے ہیں کہ بھائی اس کو شوق پڑتا ہے دین کی طرف اور عبادت کی طرف، دل کرنے لگتا ہے آدمی کا، تو بہت پھر وہ کیا کرتا ہے کہ جناب عبادت پہ زور کرتا ہے. عبادات تو بہت ہیں، نفل تو بہت ہیں الحمدللہ فرائض کے بعد، بس شوق بڑا ہوتا ہے اس میں، تو بس وہ کہتا ہے یہ بھی میں کر لوں، وہ بین بھی میں پڑھ لوں، تہجد میں پڑھ لوں، اشراق بھی میں پڑھ لوں، اور جناب چاشت بھی میں پڑھ لوں، اور پھر یہ وظیفہ بہت اچھا ہے یہ بھی کر لیتا ہوں، کسی کتاب میں نظر آئے میں یہ کر لیتا ہوں. اور تم خاص طور پہ یہ بہت عادت ہے، بڑے زور شور سے بس وظیفے تلاش کرتے رہنے، جی بھی بڑی اچھی تصویر ہے، تو بھائی فلاں آدمی نے کیا تھا اس کا بڑا فائدہ ہوا تھا، اور یہ رزق کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، کرتے ہیں نا ہم لوگ، تو اس کو گزارش شروع کر دیتے ہیں، پھر روزے نفل روزے شروع کر دیتے ہیں، بھی چلو تین دن رکھیں گے روزے یا ایک دو دن روزے رکھیں گے. تو یہ ایک طرف سے اس پر ایک اشارہ فرمایا ہے کہ عبادت تو بہت اچھی چیز ہے، نفل بہت اچھی چیز ہے، تسبیحات کرنا بہت اچھی چیز ہے، اللہ توفیق دے. لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کو اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آج تو جوش ہے، خروش ہے، خوب جوش شوق سے کر رہا ہے آدمی، پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹتے 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 پھر ایک دم غائب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلا کہاں گیا. تو بھائی یہ بھی ہے کہ اتنی ساری چیزیں اکٹھی کر لیں، پھر آدمی تھک بھی جاتا ہے نا کرتے کرتے، भाई ये भी कर लो, फलां भी कर लो, रोज़ा ये रख रहा है मैं भी रोज़ा रख लेता हूँ, इसने ये काम किया मैं भी कर लेता हूँ। किसी वो बुजुर्ग आए थे, उन्होंने अपनी कोई तकीर की, उन्होंने की बात की, भाई ये तस्वीर अच्छी है, फ़ौरन नोट कर लिया, बस ये तस्वीर मैंने शुरू कर देनी है। कोई और बुजुर्ग उन्होंने भाई ये वजीफा बहुत अच्छा है, वो वजीफा फ़ौरन शुरू कर दिया। तो एक एक इशारत उसमें यह है कि देखें भाई बात बड़ी सादा है कि आदमी खुद जो है अपना हिसाब किताब रख नहीं सकता। इसके लिए सबसे बेहतरीन सही तरीका यह है कि किसी अल्लाह वाले की तरफ इंसान रजू करे। ये इशारा मिलता है, क्यों इसमें क्या नुकसान है कि हम तो अल्लाह की रजा की कर रहे हैं, खुशी के लिए इतने वजीफे कर लिए मैंने, आज इतनी वजीफे कर ली। तो औरतें खास तो आज मैं 10,000 तस्वीर किया, 50,000 दुरुस्ती पढ़ लिया, और आज मैं फलामे रोजे से रख लिया, और बहुत आज उसका रोजा रखने हैं, इसका रोजा रखने हैं, इसका खत्म करा रहे हैं, वो खत्म। तो अपने तरफ से सोचते हैं अल्लाह को राजी कर रहे हैं, लेकिन जब पीछे ब्रेक मारते हैं आस्ते आस्ते चलता तो है नहीं काम, फिर वो फिर क्या होता है अल्लाह तआला से नाराज हो जाते हैं। तो ये उल्टी मुसीबत हो गई है आदमी के लिए, बजाय अपने रब को राजी करने के लिए और उल्टा उनको नाराज कर लिया, बजाय फायदे क्या हुआ उल्टा नुकसान हो गया। तो काम जब इतना कर नहीं सकते आप, क्यों शौक में इतने आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ये बताया गया सदी के अंदर। अल्लाह ने मिसाल दी कि फला आदमी ऐसा काम करता था, फला औरत ये काम करती थी, लेकिन क्या किया उसने, शुरू किया उसने और रातों की इबादत शुरू कर दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खाना जौकम लाइल पता रखा क्या लाइल, और फिर उसके बाद गायब भी हो गया एकदम, छोड़ छाड़ दिया, ना वो रोजे रहा ना फिर वो तस्वीर आती है फला रहा ना ये रहा। तो ये है असल में तरीका नहीं है ये इबादत करने का। फ़राइज़ अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने भी दिए हैं, 5 वक्त नमाजें हैं, बस फर्स्ट क्लास चीज़ है, फजर ज़ुहर असर मग़रिब, ये तो सबकी पाबंदी हो रही है, इसमें सब करें। अब ये है कि भाई इसके साथ नवाफिल अदा करने हमने, अब उसका तरीका क्या है, इस हदीस से इस्तवात हुआ इस बात का। अब आप ये करें कि भाई किसी ऐसे इंसान को देखें जो नेक और साल आदमी है, बुजुर्ग है कोई, तो उसी तरफ रुजू करें, और उससे जो आप मिलेंगे आप कहेंगे कि जी मैं ये करता हूँ ज़ैफ, तो कहेगा ठीक है करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर समझदार लोग होते हैं अल्लाह वाले, तो ये जानते हैं भी इसने क्या काम करना है, इसका क्या काम है, टैक्सी चलाता है या ज़ईफ़ आदमी है या बूढ़ी औरत है या फला है, तो फिर वो उसको देखने मुताबिक उसके फिर उसको वजीफा अता फरमाते हैं, आराम से भाई ये वजीफा आप करें। यहाँ तक हमारे हजरत तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इतना भी कह देते थे कि भाई 5 वक्त नमाज पढ़ो, 3 दफ़ा सुबह शाम अल्लाह अल्लाह कर लिया करो, अब उसको तसल्ली नहीं हो रही 3 दफ़ा में, यह वो तो इतना हज़ार करता है, ये कितनी जीत है, वो बता सकते हैं 1,000 10,000 बता सकते हैं, लेकिन पता है अल्लाह जानते हैं कि 4 दिन चले ही है, उसके बाद क्या होगा, भूख निकल जाएगी साधवी की, कर नहीं सकेगा, क्योंकि इसके मामूलात हमें पता नजर आ रहे हैं कि इतना काम करना है, इतना फला करना है, शौक बढ़ाया इसका थोड़ा सा जोश है, उसके बाद ये गायब हो जाएगा और ये अल्लाह ताला को बहुत नापसंद चीज़ होगी। उसकी चीज़ है ये कि हम 3 दफ़ा भी हम वो कर लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जो वजीफा किसी अल्लाह ने बताया 3 दफ़ा कर लेंगे तो पूरा सवाब इतने मिलेगा जितना 10,000 का मिलता है, उसमें पसंदीदगी की हदीस बता दी है, कितना शिकवा किया अल्लाह के नबी, देखें ये सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मुतफक्का हदीस है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई इसमें कुछ ये नहीं ज़ईफ़ है या कोई ऐसी, मुतफक्का हदीस है सही मुस्लिम बुखारी में, क्योंकि ये तो हमारा एक बहुत की पॉइंट है ना हम लोगों का, हमने तो अल्लाह को राज़ी करना है ना, हम गलत तरीके से राज़ी करने पर लगे ना वो नुकसान होता रहे हमारा, ये तो बड़ी अजीब चीज़ है ना। इस लिहाज से ये है कि भाई तरीका बताया गया कि तुम खुद नहीं कर सकोगे, क्योंकि अल्लाह की तरफ जाएंगे तो हज़ारों करोड़ों रास्ते हैं, किस किस तक भागोगे तुम, क्या कुछ करोगे, कहाँ जाओगे। उसका बेहतरीन तरीका है कि भाई ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह नवाफिल अदा करने चाहिए अल्लाह ने दिए हमें। इसी तरह आप देख रहे हैं कि जब कोई किसी के पास जाता है तौबा करता है तो कभी भी नहीं कुछ कामिल शेख की बात करो, कभी नहीं कहेगा भाई इशराक भी पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, फलां करो, इतना फिर रोज़े रख लो, फलां करो, कुछ पूछते हैं कि मैं रोज़े रख लूँ, मैं जना ये काम कर लूँ, तसली नहीं होती ना, हालांकि जरूरत क्यों फंस रहे हो भाई, जब तुम्हें तुम्हारा काम बन रहा है उसमें, हत्ता कि वो तो ये भी नहीं कहते कि भाई तुम इतने कुरान पढ़ लो, इतने सिपारे पढ़ लो, 15 सिपारे पढ़ लो, नहीं, पता है कि अभी ये बंदा जो इस काबिल नहीं है, एक वक्त आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह कि सारी रात नहीं सोएगा, कुरान ही पढ़ता रहेगा, वो वक्त आ जाता आदमी में। लेकिन आस्ता आस्ता इंसान का पता है किसके नफ्स को मारना पड़ेगा, इसकी ख्वाहिशात को ख़त्म करना पड़ेगा, इसमें अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करना पड़ेगा, इसके दिल में जो मैल कुचैल है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, हराम रस्तों को ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो ये उसमें शौक नहीं। ये जो नफिल इबादत है ना भाई, ये इसमें एक चीज़ याद रखें, ये तहज्जुद पढ़ते हैं हम, इशाक पढ़ते हैं, चाशत पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, इस इबादत के पीछे एक चीज़ है जो पूरा कराती है, वो क्या है? मोहब्बत है। जब तक वो मोहब्बत कल्ब में पैदा नहीं होगी ना, उस वक्त तक ये अदा नहीं होती ये इबादत। क्योंकि ये तो हमने करनी करनी है फ़राइज़, तो मोहब्बत होना हो वो डंडा पीछे, दिल चाहे ना चाहे आपको आनी पड़ेगा, फर्ज है, तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रोज़े आगे तो रखनी पड़ेंगे, बाकी जो नफले रोज़े हैं उस पर तो कोई सवाब बताए गए, लेकिन उसमें कोई ज़बरदस्ती किसी चीज़ में नहीं की, आप कर लें तो अलग आते, तो सवाब दे दूंगा, लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं की, ठीक है, नफिल आप नहीं रख सकते। बहुत खुशूश हुआ, मुझे बड़ा जोश हुआ, मैंने फर्ज से पूछा फलां रोजे में रखता हूँ, फलां रखता हूँ, यानी कि रखता हूँ, ये कर लूँ फलां। तुमने बड़े प्यार से समझाया कि तुम्हारा काम अब तबलीग का है, दस का है, तो तुम्हारे लिए मुश्किल होंगे, शौक है तो हो करके देख लो, लेकिन तबलीग में फ़र्क नहीं आना चाहिए तुम्हारे, अब हमको फ़ायदा पहुँचो। बिल्कुल, कितनी प्यारी बात की, कहते तेरा काम उससे अफसर एक काम आ गया, तो तुझे इस तरफ जागने क्यों जरूरत है? जाहिर है तुम रोजे रखोगे फिर इबादत में जाओगे, जो काम तुझे दिया गया है तो लोगों को तू जाके ये पैगाम पहुंचा अल्लाह का जिक्र सिखा, वो तो कमजोर हो जाएगा, तो तुम्हारे तो फायदा नहीं देगा, नुकसान है। तो तरीके से बिल्कुल ठंडा कर दिया, ठंडा ठार हो गया आदमी, क्योंकि वजह यह है इंसान की भाई करना तो हमने अल्लाह को राजी है, तो पहली चीज आदमी देखे कि आदमी सिर्फ वही वजीफा करे। और ये मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ, जब मैं कोई वजीफा बताता हूँ ये करता हूँ, तो फौरन फूना छोड़ दें, हम भी ये कर लें जी, हम भी फला कर लें, आपने जी फला फला उस वक्त आपने तस्वीर की थी, हम भी ये कर लें। वह आदमी खामोश कैसे रहे, कर लो, पता है 4 दिन करेंगे उसके बाद फिर फ्यूज हो जाएंगे। ये कभी नहीं पूछनी चाहिए इसी बात, ये होते ना हमारे इसी लाइन की बातें कर रहा हूँ मैं आपसे, और फिर बात के दिल में रहता है कि यार पूछूं या ना पूछूं, मैं कर लूं या शुरू ना कर लूं, चलो कर ही लेते हैं यार, अच्छा यार इसमें कोई फ़ायदा होगा, हजरत ने बताया नहीं, जो तुम मिले हो अपने शेख से बात की और उसने तुम्हें उसे बताया, उसको पाबंदी से पकड़ लो, उसमें ना करना हो उसको नहीं छोड़। हजरत अली करमुल्लाह वजह बाबुल इल्म कहा जाता है, सारी विलायतों की मोहर वहाँ लगती जाके, कोई गौस बने, कुतुब बने, अब्दाल बने, जियाद बने, कहाँ से निकलता है मामला? हज़रत अली करमुल्लाह वजह से, वो बाबुल इल्म है, हेड है सब वलायत के, बिल्कुल हेड, उनको बात सुनो। कहते हैं नबी पाक ने एक वजीफा बताया था मुझे और मेरी बीवी को, आकर एक वजीफा दिया था, ये जिसको हम तस्वीर फातिमे कहते हैं, 33 दफ़ा 33-34 दफ़ा पढ़ते हैं सुभान, ये नबी पाक खुद घर में जाके दिया था उनको, हज़रत अली को और उनको, कि तुम ये पढ़ लिया करो। फरमाया पूरी जिंदगी मेरी गुजर गई और बड़े बड़े मौके और वाकयात है, हत्ता के जंग सफैन के मौके पर, हत्या नहीं बता रहा है, जंग सफैन ऐसी जंग थी कहता है उससे ज्यादा सख्त मुकाम मेरे पे नहीं आया, और वो रात ऐसी रात थी कि आदमी खाना पीना नहीं पता था उसको क्या, लेकिन कहते हैं अली ने वजीफा नहीं छोड़ा। तो ये देखें कितने बड़े आदमी थे, तो हम ही सोच के जी इसमें क्या वजीफा मिलता, तो वजीफा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह, कितना बड़ा मुकाम था, सैयद तायफा उनको कहते हैं। तो इसने कहा हजरत अब आप इतना बड़ा मुकाम हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह क्या बुलंदी अल्लाह पाक ने दी है, करोड़ों आपके मुरीद हो गए हैं, सब कुछ सकस का, तो अब ये आप तस्वीर क्यों चलाते हैं? तो आप रो पड़े, कहते इस तस्वीर ने तो मुझे मुकाम दिया, इसको छोड़ दूं मैं, ये कैसे छोड़ सकता हूँ? तो आदमी वो चीज़ जो अल्हम्दुलिल्लाह किसी अल्लाह वाले की सोबत में या उसमें बैठ के मिल जाए तो उसको उसको शुक्र करें, ये भी नापैद है, बहुत कम लोग हैं जो इस तरफ चलते हैं, इसी में गुम हो जाते हैं बेचारे अपनी तरफ में। हाँ ये अब यह कि इस तरह लोग कहते हैं ये क्या जरूरी है, ये एतराज बहुत होता है ना, ये कहाँ है कि जी जरूर जा किसी शेख से पूछो, इजाज़त लोग इसे जिक्र की उस पर भी एतराज करते हैं, ये सब किताबों में लिखी चीज़ें हैं, कुरान के अंदर पूरी बातें आई हुई हैं, हमें क्या जरूरत है हम जाएँ? अल्लाह के नबी ने इशारा फरमाया, उसकी वजह यह है वो बिल्कुल ठीक है, सब कुछ कुरान में मौजूद है, हदीसों में आई हैं, दुआएं आई हैं, लेकिन तू कहाँ तक करेगा, तुझे क्या पता कि क्या करनी हो क्या नहीं करनी, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں ان اللہ والوں کی زبان پہ ایسی وہ الحمدللہ رحمت و شفقت رکھی ہے, جب وہ کسی چیز کے وظیفے بتاتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, رزق بھی آ جاتا ہے, صحت بھی آتی ہے, عافیت بھی آتی ہے, جو دعائیں مانگو اس وظیفے کے بعد اللہ پوری فرما دیتے ہیں. بھائی آج ہمارا ٹیسٹ ہے, فرض کر کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ہے اس کا, آج ہمارا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے, اب اس کے لیے فون کرنا, جی ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے, مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ, تھپڑ مارو ٹرک تھپ, وہ جو تجھے وظیفہ بتایا اس سے بڑا کیا ہے, رات تو ذکر کیا میرے ساتھ بڑا ذکر کیا اس میں دعا مانگ لیتا, نہیں جی وہ اس کے لیے ہمیں خاص کوئی وظیفہ بتائیں, آج مجھے بڑا کام ہو گیا ہے میں عدالت میں جانا ہے اس لیے کام بتائیں. اللہ کے بندے اللہ نے کتنی بہترین چیز چھوڑ دی ہے, تو اللہ کے ذکر میں صبح بیٹھا ہے اور اس سے بڑا اور ذکر ہوگا کیا, ہے تو سارے اللہ کے نام, قرآن بھی تو اللہ کے نام ہے نا, ہر وظیفہ اللہ کا نام ہے, جو بھی اللہ کا نام ہے, تو وہ جو ہے اللہ نے ریکمینڈ کر کے جو تمہیں بتا دیا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا, وہ نہیں کرنا, وہ شیطان ہے نا, وہ دوسری طرف لے کے جانا, جی وہ بتائیں 3000 بیٹھ کے رات کو کروں, اس میں اس کو سکون ملے گا, آنکھ بھی کھلی رہے اور تسبیح بھی زیادہ ہوتی رہے, شاید کہتے اس سے بن جائے گا, کتنی عجیب بات ہے. تو یہ سالکین کی بڑی اچھی بات ہے کہ جب بھی کوئی کام مصیبت پریشانی جو بھی کچھ ہو جائے ان کو کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو بےچارے کمزور ہوتی ہیں مردوں کو بتا دیتے ہیں کہ چلو یہ کر لو یا ایسے کر لو, لیکن طریقہ اس کا یہی ہے, جو الحمدللہ ذکر صبح اذکار آپ کو دیے اس کو اس معمولات کو اسی طرح پورا کرے آتے, یہ نہیں کہ بس آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دے, آج 5 تسبیح کر لیں, 2 تسبیح کر لیں, 3 تسبیح کر لیں, آج کا چھوڑ دیا, نہیں کبھی نہیں. اس کے بارے میں حدیث کے اندر صاف طور پہ کتنے اشارات بتائے کہ جو ہے ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے. ایک اور چیز, یہاں کسی عبادت کی بات نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک جنرل بات کی کہ فلاں شخص, ایک تو نام ہی نہیں کسی کے لیے, فلاں سے ہر وہ آدمی یہ کام کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, لا تکن فلاں مثل فلاں, کہ اس آدمی کی طرح موت ہو جانا, مثل فلاں, فلاں کے بعد کوئی نہیں, میں بھی ہو سکتا ہوں, آپ بھی جو یہ کام کریں گے اس میں آ گیا. دوسری چیز بتائی کہ بھائی ایک عبادت نفلی عبادت کا نام لے دیا, بھائی کاندہ یقوم اللہ, وہ رات کو یہ بات کرتا تھا. یہاں سے استباد کیا ہے مسئلہ علماء کرام نے کہ بھائی دیکھیں اب یہی نہیں صرف کہ بھائی وظیفے بھی ہیں یا عبادت بھی ہے, نہیں, زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ فعل جو نیک کام آپ کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ اس مسجد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی, آپ جھاڑو دیتے ہیں جس کو ہم حور کہتے ہیں, آج کل حور کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہو مشین چلتی جو ہو مشین ہی تو وہ مشین چلتی ہے نا, تو اس کا کیا ہے, کسی کو اللہ نے توفیق دے دی کہ بھائی وہ صفائی کر رہا ہے, اب یہ نہیں ایک دن صفائی کر کے دوسرے بھاگ گیا, موت میں سمجھنا تھا وہی صفائی کرتا ہوا, نہیں, اللہ یہ بھی عبادت ہے بہت بڑی, اس کی ایک توفیق دے دیے کہ بھائی چلو لوگوں نے کہتے کلو تم, اب وہ کرنے لگا, اب یہ کہ اس پہ پابندی اختیار کرے, کسی کو کہہ دے کہ بھائی آپ یہ میں کر لوں گا, بالکل آپ مجھے دے دیں میں دروازہ بند کر لیا کروں گا, اب اس نے ڈیوٹی لے لی, اللہ کتاب میں لکھا گیا خادم مسجد ہے, کتنے بڑا مرتبہ اللہ اس کو مل گیا, مسجد خادم ہے, اگر اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی اپنے گھر کی مسجد نہ سمجھے, کیا سمجھے اللہ کا گھر ہے, تو ایک آدمی کھڑا کرتے حضرت میں کر لیتا ہوں, کمیٹی والا اس کا اس کا جب شوق شوق اس میں ہے تو اس کو چاہیے کہ اب اللہ نے جو اس کو ذمہ داری دی ہے اب اس کو تا حیات نبھائے, چھوڑے نہ اس کو کہ نہیں جو کچھ بھی ہوگا میں نے اب یہ کام کرنا ہے الحمد للہ, اس چابی کو میں نے لے کے میں تار, یہ مثال دے رہا ہوں, کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ بھائی اپنے شیخ کی خدمت کا موقع مل جائے, یہ تو بہت ہی نور اللہ نور بات ہے الحمد للہ, کیونکہ جتنا اپنے شیخ کے کوئی نزدیک ہوتا ہے اس ہی طرح زیادہ فیض یاب ہوتا ہے, اگر بدتمیز نہ ہو, لیکن آج کل لوگ بے ادب ہو جاتے ہیں, جتنے کلوز ہوتے ہیں اتنے بے ادب ہو جاتے ہیں, منہ کھلنے لگتے ہیں, بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں, ایکشن ماننے لگتے ہیں, باتیں نہیں سنتے, اس سے بہتر ہے وہ دور رہیں لوگ, لیکن ہے یہ کہ دیکھیں آپ سورج کے جتنے نزدیک رہیں گے گرمی پہنچے گی نہیں پہنچے گی, آگ کے قریب بیٹھیں گے گرمی پہنچے نہیں پہنچے گی, جب جو کوئی اللہ والے کے پاس پہنچے گا تو اس کا نور پہنچے گا نہیں پہنچے گا, وہ تو عجیب انسان بن جاتا ہے, لیکن جو بدتمیز بے ادب لوگ ہوتے ہیں وہ اور ضائع کر دیتے ہیں اپنی بکواس بازی سے, عکیشوں سے وہ خدمت ختم کر دیتے ہیں. یہاں اس حدیث سے ثابت ہو کہ اس پر اللہ کا شکر کریں, اس پہ پابندی اختیار کرو, ایک پانی پلانے کی بھی خدمت مل گئی اس کو اللہ کا شکر کرو با ادب طریقے سے, تاکہ اللہ کر کس کے لیے رہیں, خبردار اس یہ نیت نہیں کہ میں اپنے شیخ کے لیے کر رہا ہوں, نہیں, میں خدمت کر رہا ہوں, اللہ تیرا یہ دوست ہے تو تیری رضا کے لیے میں خدمت کر رہا ہوں, تم نے بڑا اچھا موقع دیا کیونکہ تیرے محبوب بندے کی میں خدمت کروں گا تم اس سے راضی ہوگا, ये बहुत बड़ी चीज है। इसमें ये नहीं कि भाई तीन दिन तो आए जी हम आप करेंगे हम करेंगे और चौथे दिन गायब, जरा तेज बारिश हो तो पता नहीं किधर चलेगी, या कोई कितनी तकलीफ दे रहा है उस आदमी को, फिर वो तो बेचारा समझ जाएगा आज भी आएगा कल भी मेरी खिदमत करने आएगा या कुछ लेके आता है या सौदा लेकर आता है या कुछ भी है। मैंने देखा मैं अपने हजरत के पास, मैं तो वही मिसाल देता हूँ कि बहुत कामिल वली को हमने देखा। एक शख्स थे बहुत बड़े रुतबे पर थे, आला रुतबा था उनका, तो उनको शौक था भाई मैं अपने हजरत की खिदमत करूँ, तो हजरत मना नहीं करते थे। तो वो क्या सुबह का सौदा ला देते थे गोश्त वगैरह, दिल हमारा बड़ा करता था हम भी ये खिदमत करें, लेकिन पता था कि खिदमत वही हाथ डाले इस पर कि जो हमेशा कायम हो सकता हूं, अपनी हैसियत पहचानते हैं आदमी, पंगे ना ले बिला वजह में, क्योंकि इसमें नुकसान है पता है। तहज्जुद पे वही आदमी खड़ा हो जो हमेशा पढ़ सकता हो, ये वजीफा वही पढ़े जो हमेशा कर सकता हो, इसलिए तो अल्लाह वालों को बताया था। ये इसी तरह कि भाई वही आदमी उन चीजों को जो नेक अमाल में से कोई नेकी भी हो इंसान, उस आदमी को करना चाहिए, हिम्मत भी पैदा करे। इसमें एक और चीज बताता हूं कि अगर आदमी के दिल में सही मोहब्बत और अल्लाह की रजा सब कुछ है, वो किसी खिदमत जाता है तो अल्लाह सुबहान तआला उसमें ताकत पैदा फरमा देते हैं, पीछे नहीं होता। ये भी अल्लाह दर्जे की बात है, अल्लाह ने दरवाजे तो बहुत खोले इंसान के लिए, ये नहीं कोई कम है किसी चीज से, नहीं, किसी आदमी की खिदमत कर देना बहुत बड़ी चीज है। कोई चीज भी अल्लाह के नाम पर ड्यूटी बना लेना अपनी बहुत बड़ी चीज है, बेकार जिंदगी से बेहतर नहीं कि आदमी कहे चलो मैं ये काम कर लेता हूं। बताए अब सिर्फ यही तो नहीं, बस नमाजी पढ़ने कोई चीज है, अल्लाह ताला ने कितनी बेहतरीन चीज बताई कि कोई भी खिदमत ले ले, अपने मोहल्ले में ले लें आप खिदमत को, बाल खिदमत कोई ले लें किसी आदमी की, या कोई बेचारा नाबीना है आपके चीज है नाबीना आदमी है, मैं तुझे रोज मस्जिद में लेके जाऊंगा या बस एक ड्यूटी ले लिया आपने, कितना स्वाब बन गया, अल्लाह ताला कितना स्वाब देगा। एक लंगड़ा आदमी बेचारा वो चल नहीं सकता, आपने कहा इसके लिए बड़ी तकलीफ हो रही है, आप कहें ठीक है कोई आसान नहीं उस पर, बल्कि आसान उसका है आप पर, इसकी खिदमत करें उसका आपका आसान है, उसने आपके खास तो अल्लाह वालों का तो आसान नहीं है, वो तो उनके आसान है कि वो आपकी खिदमत को कबूल कर रहे हैं। आप बदतमीजी बन जाए उसका फायदा ना उठाएं तो फिर फायदा क्या उसका, दांत निकालना शुरू कर दें फजूल हरकतें शुरू कर दें बेअदबी कर, बजाय फायदा क्या होगा नुकसान होगा, बदतमीज आदमी से कुछ नहीं ला सकता। तो ये इस हदीस में बताया गया कि जो अमल भी नफिल अमल आप अख्तियार करें उसमें क्या करें, हमेशा की अख्तियार करें, बस को काबू कर लें बात को। और हमारे लिए तो ये कोई अमल खुद अख्तियार ही ना करें, जरूरत ही नहीं, हर अल्हम्दुलिल्लाह दो आपकी जो जिक्र दिया जाता है जिक्र दिया गया है उस पर पाबंदी अख्तियार करें, उसको ना छोड़ें बिला वजह, उसको छोड़ना बिल्कुल जरूरी नहीं, उस पर पाबंदी अख्तियार करें अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मामलात हों उसके बाद दुआ कर लें अल्लाह पार आसान कर देंगे सब कुछ। अब इसमें एक बड़े अच्छे हदीस सुनाता हूँ आपको, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितने बड़े बड़े सही मुस्लिम की हदीस है, इसमें एक और रियायत मिल जाती है, देखिए बड़ी अच्छी रियायत है। फरमाते हैं कि भाई देखो कभी ऐसा हो जाता है आदमी थका हुआ है, कोई ऐसी मामला हो जाते हैं, इंसान ही है ना बंदा ही है ना, तो वो बेचारा सुबह का वजीफा उसका रह गया, फजर के बाद था या तहज्जुद के बाद का कोई वजीफा था वो नहीं कर सका, रह गया, नींद आ गई, आंख नहीं खुली, कुछ हो जाता है आदमी सा, अब तो इतना अचर गया, अल्लाह ने एक आसानी फरमाई हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाए इस हदीस को, सही मुस्लिम की हदीस है, कहते भाई अगर ऐसा हो जाए कभी कि आपको सुबह का कोई वजीफा रह गया आप पूरा नहीं कर सके, तो फिर क्या कि आप फजर से लेकर जहर तक किसी वक्त भी कर लें पूरा अजर मिल जाएगा। कितनी बड़ी बात है, कजा इस तरह कजा का एक तरीका बता दिया कि वो जो वजीफा आपके रह दिया, अब ये ना कहीं यार रह गया रोते रहे शाम तक, यार कोई बात नहीं जोर तक का टाइम दे दिया, उस वक्त तक आप जो है उस वजीफे को अदा कर लें, बिल्कुल वही सवाब आपको मिलेगा जो रात को मिलना था आपको सवाब। कितनी अहम चीज होगी पाबंदी आप नोट करें, तो कभी बस ये तो सोच ले जो अल्लाह पर राह चलने वाला मर्द औरत है अपने वजीफों को कभी जाया ना करें, और जो मिली है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से तौफीक करे कि मेरी उस्ताद को बढ़ा, मेरे जौक और शौक को बढ़ा, मेरी ताकत को बढ़ा, और फिर मुझे तो मजीद अपने रास्ते पर इबादत करने की तौफीक नसीब फरमा, ऐसी इबादत करने की तौफीक नसीब फरमा कि मेरे पांव सूज जाए और मुझे लज्जत महसूस हो, मेरे सर झुका रहते सजदे के अंदर और मुझे लज्जत लज्जत महसूस हो, कभी उसको हटाऊ ना, ये लुत्फ नहीं, इतनी कि भाई छोड़ के फिर भाग जाया दे। तो अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए जो अमल दे ऐसा दे कि उस पर कायम हो जाऊं और उस अमल में बढ़ोतरी दे, बढ़ता रहा चल रहा है, रुके ना, थकू ना मैं तेरे अमल से, खुद अल्लाह ताला इतनी ताकत में ताफरमा दे, रुकू भी ना और पीछे भी ना जाऊं। जैसे एक बहुत बड़ी दुआ है ना, अल्लाह ताला उन लोगों में शामिल ना फरमा कि मैं पीछे मुड़ जाऊं अपने उस जगह पे जहां मैं पहले था। कितनी बड़ी दुआ है आप सोचते हैं, जैसे बंदर था ना पहले में पागल, उसी तरह फिर पीछे जाते 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 पागल में शुमार हो जाऊं। आपके सामने देख के निकल गए, नहीं निकले पता नहीं चलता कहाँ गायब हो। कितने जोक शोक से आते थे लोग, लगता था बस जय तो भाई ये तो बन गया कुत्ता भाई कोई गौ से जगा का, और जो दुनिया में शो गायब हो गए। ये एक हकीकत है, कुरान और हदीस जो है वो सच्चा है। मैं आप जो बैठे हैं ना ये सब उसका फजल है, कलाम है उसका। इन ऐसे चीजों को देख के डरना चाहिए आदमी को, जब देखे ना यार एक आदमी था हमारे साथ बैठा करता था, कभी वो जिक्र नहीं छोड़ता था, हमसे पहले जिक्र होता था, मस्जिद में सबसे पहले होता था, बोर्ड लिखने में वो सबसे आगे था। था ही नहीं ऐसे आदमी, थे ना बहुत से, आपके होते होते आए होंगे, हम तो जिंदगी में देख रहे हैं लोग। कितने ज्यादा मोहब्बत रखता था, क्या ताल्लुक था, नाम ही भूल गए लोग, किधर गया। तो इस देखिए इबरत है कि अल्लाह ताला कल मेरे साथ तो ये नहीं हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फौरन दुआ सिखाई कि अल्लाह से दुआ मांगो तुम कि अल्लाह ताला मुझे उन लोगों में शामिल ना फरमा लेना, मुझे ऐसा ना बनाना कि जो पीछे भाग गया फिर दोबारा मुड़के नहीं आया। कितना बड़ा अजाब है अल्लाह ताला का, मुझे बताएं कि उस जिक्र की मजालिस से या उन नेक कामों से उसको दिल को अल्लाह ने बंद कर दिया, ठप कर दिया। होता है ऐसा, आपके सामने हुए तो इसके डरना चाहिए आदमी को, देख के अल्लाह ताला कितना बड़ा बुरा है इसका अंजाम हो गया, यही तो गायब हो गया आदमी, इसकी जिंदगी तबाह बर्बाद होगी सारी, जो उसने पहले की थी वो भी खत्म हो गए। तो ये अब जिस तरह यहां हम आते हैं इस मस्जिद में है कि उस मस्जिद में है, भाई कोशिश करेंगे पाबंदी हो बजुज उसके, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी हो जाए कुछ हो जाए नहीं जा रहे, बेशक 10 मिनट की हाजिरी लगा दें 5 मिनट, इसको कहते हैं पाबंदी। देखें कैसे अल्लाह के फिर इनामात उतरते हैं, मत छोड़े 5 दिन अल्हम्दुलिल्लाह रात को ये बात मत छोड़े, भाई फला मस्जिद से मैं जाना है, ये मेरी जिंदगी बन गई है, मेरा मामूल बन गया है, क्या करें बैठ के चले चलते हैं अल्लाह का जिक्र करेंगे। और इसमें बहुत ही अच्छा है कि भाई टाइम देख रहे हैं कि भाई अब हमारा टाइम जो है क्रैश हो रहा है, कोई बात नहीं 5-10 मिनट पहले तैयारी शुरू कर दें, 15 मिनट पहले आप दुकान बंद कर दें, कारोबार बंद कर दें, वो जो आप छोड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 मिनट अपना नुकसान दुनिया का करेंगे, आप देखिए कि उसका बदला अल्लाह पाक कैसे देते हैं। पाबंदी रखना हो आता ऐसे वक्त आता है कि बेचो हो इतना जिक्र का टाइम है, या मेरी दुकान का भी टाइम है, मेरी टैक्सी का टाइम है, या मेरा माल भेजने का भी टाइम है, फला टाइम है, कहते हैं वो टाइम अपनी जगह, वहां पाबंदी नहीं करनी, यहां पाबंदी करनी है, इसको मैंने जाना है जहां जिक्र हो रहा है उसको टाइम नहीं चेंज करना, हमने पहुंचना है। बिशे 5 बजे मस्जिद में जिक्र हो रहा हम तो आएंगे 5 बजे, 4 बजे, 4 बजे हम आएंगे, आती है ना अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अपनी पाबंदी को खत्म नहीं हमने करना। और आता वही है जिसका अल्लाह का फजल होता है, इन चीजों पर अल्लाह उन्हीं को बिठाता है, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करता है, क्योंकि उसको क्या पता कि कितना सवाब लेके वो आदमी उठता है, कितना इनाम लेके उठता है, करोड़ों क्या दुनिया के बराबर भी कोई दौलत उसको दे दे आखिर में देखेगा तो उस एक सीटिंग का मस्जिद के जिक्र में बैठा है वो सब कुछ छोड़ के, वो भी उसके मुकाबले में कुछ नहीं होगी। एक थोड़ी देर की जो हमने कमाई छोड़ के हैं वो तो अलग छोड़े हैं, आप इस दुनिया के बराबर भी अगर आप इनाम देखेंगे, ये दुनिया उस दुनिया के बराबर सारी दौलत भर जाए, और आप कहें जी ये दौलत जो है आपके सामने पेश की जाए कि दुनिया ले लो तुम ये छोड़ दो, ये लात वाली दुनिया है क्या उसके मुकाबले में, असल दौलत जो सामने नजर आ गया, इतना फर्क है इनमें और उनमें। तो इसकी पाबंदी इख्तियार करनी चाहिए हमें, जो सुनते हैं इस पर क्या कहते हैं वो भी, औरतें भी मर्द भी सुन लेंगे मेरी बात, पाबंदी इख्तियार करें फैले, ये तो बहुत बड़ी चीज है कि किसी नेकी को शुरू कर दें उसको छोड़ना नहीं। बस अल्लाह पाक मुझे भी आपको तौफीक नसीब फरमाए।